हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद। ये देह भाजन त्रिगुणा प्रधान भुवान विपश्यन्तु तवा तमश्च जन्माय या मूषित चेतस्त्वाम्। विदुष्व सम्यम् न बहि प्रकाशा विदुष्व संस्थाम् न बहि प्रकाशा। ये देह भाजा त्रिगुण प्रधान गुणान् विपश्यन्तु तवा तमश्च जन्माया मोहित चेतसस्तम् विदुः स्वसंस्थम् न बहिः प्रकाशः।
शब्दार्थ। ये जिन पुरुषों ने देह भाजा भौतिक शरीर धारण किया है, त्रिगुण प्रधानः तीनों गुणों द्वारा प्रभावित, गुणान तीनों गुणों की अभिव्यक्ति, विपश्यन्ति केवल देख सकते हैं, उत ऐसा कहा जाता है, वा अथवा तमः तमोगुण च और यत माया जिसकी माया से मोहित मोहित चित सह जिनके हृदय त्वाम आपको विदुह जानते हैं, त्वम संस्थम अपने शरीर में स्थित न नहीं बहि प्रकाशः जो केवल बहिरंगा शक्ति के फलों को देख पाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे स्वामी, आप सबों के हृदयों में भली भांति स्थित है, किंतु भौतिक शरीर से आवृत सारे जीव आपको नहीं देख पाते, क्योंकि वे त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रभावित रहते हैं। उनकी बुद्धि सतो रजो तथा तमो गुणों से ढकी होने से वे प्रकृति के इन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को ही देख पाते हैं। तमोगुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण जागृत या सुसुप्त जीव प्रकृति की कार्य विधि को ही देख पाते हैं, वे आप भगवान को नहीं देख सकते। तात्पर्य। भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त किए बिना प्रत्येक मनुष्य भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। भगवान हर एक के हृदय में स्थित है, किंतु बद्ध जीव प्रकृति के द्वारा प्रभावित होने के कारण उसके कर्म तथा फलों को ही देख पाते हैं, भगवान को नहीं। अतएव मनुष्य को भीतर बाहर से अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। अपवित्र है पवित्रो वा सर्वास्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुनरिकाक्षम सेवायभ्यंतरे शुचि। बाहर से स्वच्छ रखने के लिए हमें तीन बार स्नान करना चाहिए और आंतरिक शुद्धि के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को इसी नियम बाह्यभ्यंतर सूची का सदैव पालन करना चाहिए, तभी एक दिन भगवान का साक्षात्कार हो सकेगा।
राजा अंश हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रसिद्ध वैवस्वत मनु की संतान परंपरा का वर्णन हो रहा है, तो मनु महाराज के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु महाराज हैं, उनके 10 पुत्र थे, और पहले तो सुदुम्न हो गया जो इसी शरीर में स्त्री रहता था और पुरुष भी। तो इसके बाद मनु महाराज ने तपस्या किया, तो उनको 10 प्राप्त हुए, 10 पुत्र प्राप्त हुए। तो उन पुत्रों में इक्ष्वाकु महाराज प्रधान है। इक्ष्वाकु महाराज के वंश परंपरा का श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए महाजशस्वी, जिनका नाम सगर हुआ। तो सगर के पिता का नाम था बाहुक। राजा बाहुक के शत्रुओं ने उन्हें जीत लिया और उनके भूमि को दखल कर लिया, तो वे वन में चले गए अपनी पत्नी के साथ। तो वन में चले गए, तो बहुत वृद्ध हो गए थे, तो अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके साथ उनकी पत्नी भी सहमरण के लिए तैयार हो गए, सती होने के लिए तैयार हो गए। तो महाराज सगर के बाहु के पुरोहित और वह मुनि थे, और वह तो उन्होंने देख लिया कि यह स्त्री गर्भवती है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, तुम सती नहीं हो सकती हो। जिस स्त्री के उदर में बच्चा रहता है उसे सती होने का नियम नहीं है। तो वह गर्भवती थी और महाराज बाहु की बहुत सी पत्नियां थी। तो अन्य पत्नियों ने दाह किया, ईर्ष्या किया इस पत्नी से, और उसको भोजन में जहर दे दिया कि इसको बच्चा न होने पाए, ये भी मर जाए। तो उस गर के साथ, गर का अर्थ होता है विष, विष के साथ वह बच्चा पैदा हुआ, गर के साथ, इसलिए उसका नाम हुआ। ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, और सुखदेव जी कहते हैं महाजसा, महान जसस्वी। महाराज सगर अपने राज्य काल में यवनों को बहुत दंड दिए और सबको मारना चाहते थे, लेकिन गुरु महाराज ने कह दिया नहीं, इनको छोड़ दो, इनको केवल क्रूर बना करके छोड़ दो। तो उन्होंने क्रूर बना दिया, तो अर्ध मुंडितान, आधा मुंडन किए रहते थे, सिर भी आधा और जहां तहां चोटी बिना मतलब के रखते थे, और दाढ़ी रखवा दिया कि दाढ़ी तुमको रखना ही है। उनकी वेशभूषा विकृत कर दिए, इसलिए कि उनकी पहचान हो सके कि ये जवान है, ये पहचान हो सके। तो महाराज सगर की पत्नी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न। तो ऐसी घटना घटी थी कि राजा सगर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था। ये नियम है कि वो घोड़ा जो भी रोकेगा वो महाराज की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। तो यज्ञ पूरा होने पर राजा सगर स्वर्ग में जाते और इंद्र जैसा अधिकार प्राप्त होने वाला था उनको। तो इस बात से स्वर्ग के राजा इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई, वे घोड़ा को चुरा लिए, घोड़ा को रोके ही नहीं वो चुरा लिए। घोड़ा खोजने लगे सब लोग, विशेष करके राजा सगर के पुत्र 60,000, खोजने कहीं नहीं घोड़ा मिला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना चालू किया। 60,000 बड़े बलवान क्षत्रिय थे, जैसे भी खोदते होंगे कुदाल से या जैसे तैसे लोग पृथ्वी को खोदना चालू किए और खोदते खोदते वो कहीं घोड़ा नहीं मिला। तो राजा सगर के पुत्रों के खोदने से पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उसी को सागर कहते हैं। सागर इसीलिए कहा जाता है समुद्र को कि महाराज सगर के पुत्रों ने बनाया खोदा। अंत में घोड़ा नहीं मिला तो वे लोग पूर्वोत्तर दिशा में गए, पूरब और उत्तर के तरफ। तो आज जहां गंगा सागर है, जहां कपिल मुनि का आश्रम है, वहीं वो घोड़ा मिला। तो इंद्र ने उस घोड़ा को चुरा करके भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिया था। ये सब क्षत्रिय बड़े उदंड थे, वे गए और घोड़ा देखते ही कहने लगे, ये चोर आंख बंद करके बैठा है, ये दुष्ट, इसको मारो। थोड़ा भी विचार नहीं किए कि ये ब्राह्मण है, ऋषि है, साक्षात भगवान के अवतार, उनको पहचाने नहीं, और अच्छे रजोगुण के कारण वे सब हाथ में अस्त्र लेकर के तैयार हो गए। मारो मारो इस चोर को मारो। और चोर तो कोई और था, वो भगवान को मारने के लिए तैयार हो गए। कोई नहीं कहता था, नहीं सोच लो छोड़ दो, विचार करो नहीं, जो देखता था मारो मारो। घोड़ा चुरा करके यहां आंख बंद करके बैठा है, ध्यान का नाटक कर रहा है। वे लोग मारने के लिए तैयार हो गए, बहुत हल्ला करने लगे, मारो मारो। तो भगवान कपिल देव की आंखें खुली और वे देखे, और उनके देखते ही वे जल करके राख हो गए। 60,000 पुत्र ये राजा सगर के। तब अब जब राजा सगर के पुत्र इस तरह से मर गए और ब्रह्मदंड से ब्राह्मण के साप से मर गए, वास्तव में साप नहीं हुआ था, वे इंद्र की माया से मोहित थे। भगवान कपिल देव में तो क्रोध हो नहीं सकता था, वो तो विशुद्ध सत्वमय है और क्रोध होता है रजोगुण से। भगवान में माया है ही नहीं, माया की वृत्ति रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कपिल देव के क्रोध से जल करके राख हो गए, लेकिन ये गलत है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह कहना गलत है। जिनके द्वारा स्थापित सांख्य योग रूपी नौका से लोग इस भवसागर को पार कर जाते हैं, बड़े बड़े मुनियों के गुरु भगवान कपिल देव को क्रोध नहीं हुआ, ये अपने अपराध से मर गए। भगवान में थोड़ा भी क्रोध नहीं हुआ, रंज होकर के नहीं देखे उन्होंने, केवल हल्ला सुन करके आंखें खोला तो आंखों के खोलते ही सबके शरीर में आग लग गई। कोई भगवान ने पेट्रोल नहीं छिड़का तो अपने आप सबके देह में आग उत्पन्न हो गए और वे ही जल करके राख हो गए। तब अंशुमान भगवान की स्तुति कर रहे हैं। राजा सगर की एक पत्नी थी, उसका नाम था केशिनी। तो केशिनी के गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र हुआ। उसका नाम असमंजस इसलिए रखा गया कि उसका आचरण बेढंगा था, असमंजस, सामंजस्य नहीं बैठता था। तो वो पूर्व जीवन में, पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा योगी था, भक्त था, साधु था, लेकिन योग से विचलित हो गया और उसे इसमें इस बार क्षत्रिय में जन्म मिला। परंतु उसके आचरण बेढंगा थे। वो अयोध्या में अपने संबंधियों के और लोगों के भी बच्चों को खेलते देखता था तो पकड़ पकड़ कर सरजू में डाल दिया करता था, इसका स्वभाव था। तो इससे राजा सगर ने उसे दंड दिया, निकाल दिया राज से, नगर से बाहर कर दिया। तो उस असमंजस के कारण राजा को चिंता हुई, राज से बाहर कर दिया उसको। फिर असमंजस आकर के अयोध्या में करामात दिखाया। जितने बच्चों को सरजू में डाला था सब जी जी करके आ गए। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। असमंजस के एक पुत्र हुआ, वो अंशुमान उसका नाम था। अंशुमान वो भी अपने पितामहों को खोजने के लिए चला कि कहां गए वो 60,000 दादा लोग। सबको खोज रहा था लेकिन अंत में हार गया। बहुत अंत में उसको पता लगा। पहले असमंजस ने कोशिश किया, वो पता लगा लिया था कि हमारे पूर्वज कपिल मुनि के आश्रम के पास जल करके राख बने हुए हैं। फिर अंशुमान ने पता लगाया, तो पता लगा करके भगवान कपिल देव की स्तुति कर रहा है। उसी स्तुति का श्लोक है जिसकी आवृत्ति हम लोग की है। और भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, जितने देह भाजा, जितने शरीरधारी हैं, भौतिक शरीर जिन्होंने धारण किया है, उनको देहभाजा कहते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है कि कोई प्राकृत देह आदि से रहित है, लेकिन अपने कर्म के अनुसार इस प्राकृत जगत में उसको जन्म देना पड़ता है। विविध देह 84 लाख प्रकार का देह है, जिसमें मनुष्य शरीर एक है। ऐसे बहुत शरीर हैं, सारे जगत में फैले हुए हैं शरीर, जल में, स्थल में और आकाश में बहुत प्रकार के जीव हैं। तो ये सब जीव भगवान की त्रिगुणमयी माया से मोहित हैं। तीन गुणों सत्व, रज और तम से युक्त माया शक्ति है, इसी माया के अधीन सभी देहधारी हैं और वे प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा चालित होते हैं, मोहित होते हैं, अतः भगवान को नहीं जानते हैं। स्वसंस्थम, जबकि भगवान स्वस्मिन् एव सम्यक् स्थितम्, भगवान सबके भीतर हैं। स्वसंस्थम का अर्थ है अपने भीतर स्थित भगवान को नहीं जान पाता है और वही प्रकार बाहर फैले हुए जड़ जगत को, मैटेरियल जगत को देखता है, अनुभव करता है, खाता है, पीता है सब, लेकिन भगवान का अंश होते हुए भी जीव माया की तरफ मुंह किए रहता है, क्योंकि वही प्रकाश है। इसको अपने स्वरूप का या भगवान का कुछ पता नहीं होता है, केवल बाहर इसकी चित्तवृत्ति रहती है। यह मनुष्य जीवन मिला है बहुत जन्मों के बाद, भगवान कृपा करके शरीर देते हैं और इसीलिए यह शरीर देते हैं कि अब इस शरीर में यह जीव हमको जान जाए। भगवान ये सोचते हैं कि अब हमारे तरफ दृष्टि करेगा, अब कृष्ण भावना को ग्रहण करेगा और मुक्त हो जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी उदारता है कि मनुष्य देते हैं और बहुत बहुत जन्मों के बाद शरीर मिलता है, तो इसके भैलू को समझना चाहिए हमें, किस लिए मिला है। मिला है और कुछ ही दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वर्ष के लिए मिला है और नष्ट हो जाएगा। नष्ट कब होगा इसका कुछ पता भी नहीं है। नष्ट होगा जरूर, इतना निश्चित है, लेकिन कब इसका भी पता नहीं है। तो यह दुर्लभ अवसर भगवान ने दिया है, इसमें इस शरीर में जब तक हैं तभी तक हमें भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा फिर हम दूसरी योनियों में चले जाएंगे, मत अज्ञान में योनिया। त्रिगुण प्रधाना और तमस अलग से कह रहे हैं अंशुमान कि अधिकांश वे तमोगुण में ही जीवन बीत जाता है। बहुत कम ऐसा अवसर आता है जब थोड़ा सत्वगुण और रजोगुण में आदमी रहता है। तो इस जगत में जितने जीव हैं शरीरधारी, सबकी यह हालत है। तो सब तो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं और भोग योनियां हैं, जो भी दूसरा शरीर है वो सब भोग योनि है, मनुष्य शरीर कर्म योनि है। इस शरीर से हम जो कुछ करेंगे आगे भोगेंगे, और अन्य शरीर ऐसे है जिसमें हम किए हुए कर्मों को भोग रहे हैं। तो नहीं जानता है अपने कर्म को भोग रहा है तो अपने कर्म फल को क्षीण कर रहा है, कोई नरक में है कोई स्वर्ग में है, तो वो घाटे में नहीं है। कोई बहुत भारी दुख में है तो अपने पापों को वो खत्म कर रहा है धीरे धीरे। हम मनुष्य शरीर में हैं तो इस शरीर से कर्म होते रहते हैं, और इस शरीर से किए गए कर्म का रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है। कोई भी काम करेंगे उसका फल होगा, उसको रूपा जी कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज, फल उत्पन्न करता है कर्म, और कर्म फल बांधता है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भले हमको याद न हो कि हमने एक कर्म किया था, लेकिन फल भगवान दे ही देंगे, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए मनुष्य शरीर में कर्म करने में बहुत सावधान होना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें आगे बंधन करे। एक बार महाराज धृतराष्ट्र के मन में ये जिज्ञासा हुई, और वे वेदव्यास देव से पूछे कि हमने ऐसा कौन कर्म किया था कि हमारे 100 बेटा हमारे सामने ही मर गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 बेटा मारे गए, जिनमें दुर्योधन दुशासन आदि मुख्य थे। तो भगवान वेदव्यास देव से पूछ दिए कि हमने तो कोई गलती नहीं किया, हमको याद बिल्कुल नहीं है कि हमने कोई गलती किया। जब से जन्म हुआ है तब से अंधा हूं, कोई गलत चीज देखा नहीं, गलत काम किया नहीं, तो ऐसा कौन सा हमने, क्यों हमको दंड मिला, हमारे 100 पुत्र क्यों मार दिए गए। तब भगवान वेदव्यास देव ने कहा, देखने लगे थे क्या क्या पूर्व जन्म में किए, तो उन्होंने बताया कि महाराज आप 100 जन्मों तक, आज एक से चालू किया है तो 100 जन्म पीछे तक आप कोई पाप नहीं किए, लेकिन 101 जन्म पीछे की बात आपको याद नहीं है, वो आप राजा थे। धृतराष्ट्र महाराज 101 जन्म पहले राजा थे, तो ये इन्होंने भोजन के लिए एक रसोइये को नियुक्त किया था, राजा थे ही, जो रसोइया उनको भोजन कराता था। तो रसोइया एक बार गया बगीचा में, गार्डन में गया, और वहां एक हंसिन ने बच्चा दिया था, अंडा दिया था, 100 अंडा, और फिर बच्चे हुए। तो रसोइया हो तो शिक्षित व्यक्ति नहीं था, वो राजा के लिए भोजन बनाता था, तो वो हंस के बच्चों में से कभी 10 कभी 5 कभी ऐसे ला ला करके उनको काट करके और खिलाता था राजा को, तो बहुत स्वाद आता था खाने में। तो राजा मांगते थे ठीक है हमको ये भोजन बना और दो आगे और दिनों में लाया करो। तो उसके 100 बच्चों की हत्या हुई थी राजा के कारण, राजा खाए थे। तो वही 100 बच्चों को आपने मरवाया था, भोजन करने के लिए, तो उसी पाप का दंड मिला कि आपके 100 बेटे मारे गए। भगवान वेदव्यास देव ने बताया उनको। यद्यपि धृतराष्ट्र को याद नहीं था, उसी तरह से हम लोगों को कुछ याद नहीं है कि पहले क्या किए अब क्या कर रहे हैं। और बड़ी मूर्खता है कि शास्त्र पढ़ करके और सुन करके भी ज्ञान नहीं होता है। ये कर्म योनि है और ये चांस दिया गया है कि हम भगवान को समझें, भगवान को जान जाए। भगवान को जानने के बाद ही हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके ये अंतर्राष्ट्रीय समाज उत्पन्न किया है, एस्टेब्लिश किया है। तो बहुत सुविधा है भगवान को समझने की और भगवान से प्रेम करने की, बहुत सुविधा है। और सुविधाओं में ये महामंत्र का जप है, बहुत बड़ी सुविधा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो ये दुर्लभ अवसर से लाभ उठा लेना चाहिए। विशेष करके जो मंदिर के निकट रहते हैं तो उनको तो और भी वरदान है भगवान का कि वे मंदिर में आ सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं, इस तरह से अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। यदि इस जीवन में हमने भगवान को नहीं समझा तो बहुत बड़ा चांस खो दिया, फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्र में कभी कीड़ा होना, कभी पक्षी होना, कभी जलचर जीव होना, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं है, जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देने के लिए है। अब इसके बाद जन्म नहीं, अब हम अपनी संस्था में, अपने स्वरूप में होकर के भगवान के धाम में जाए, इसके लिए शरीर है। तो बहुत तत्परता के साथ इस भक्ति के नियम को अपनाना चाहिए। भोगों में मन नहीं देना चाहिए। ये संसार के सभी वस्तुएं भोग कही जाती हैं। केवल हम यहाँ घर बनाने के लिए या कमाने के लिए, अर्थ अर्जन के लिए नहीं आए। अर्थ जरूरी है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में रह करके हमें कुछ और करना है। अर्थ का उपयोग हो भगवान को समझने में, भगवान को पाने में। यह बहुत आवश्यक है। सभी लोग शांति चाहते हैं, शांति मिलती नहीं है संसार में। रोज रोज गाड़ी से चढ़ करके घूमना आना, हुर हुर। यहां से जहां जाते हैं बम्बे के लोग तो गाड़ी पर चढ़ करके, चाहे अपनी गाड़ी या दूसरे की गाड़ी, पर यहां के लोग उधर जा रहे हैं। बिरार से लेकर के और वहां बॉम्बे तक वो सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्यों जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि भोग लालसा है, वो कुछ चाहते हैं, अर्थ संचय करते हैं कि इस अर्थ से हमें भोग प्राप्त होगा, स्त्री घर द्वार फर्नीचर ये सब भोग की सामग्रियां हैं, यहां तक कि स्वास्थ्य की फेर में रहना, हम स्वस्थ हो जाए, हम तंदुरुस्त हो जाए, ये भी एक भोग है। यदि हम भगवान को समझने में इस शरीर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये शरीर भी एक भोग है, जीना जीने की इच्छा भी भोग है। क्यों जिए? हम संसार को भोगने के लिए नहीं हैं, हम हायर सुख प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस उत्तरदायित्व को हम समझ लेना चाहिए। अंशुमान भगवान कपिल देव से कह रहे हैं कि ये जीव सब बाहरी दुनिया पर दृष्टिपात रखते हैं, बाहर सुख देखते हैं और आपको नहीं जानते हैं, जबकि आप स्वसंस्थम स्वस्मिन एवं सम्यक संस्थम, आप सभी जीवों के भीतर हैं, हृदय में हैं, लेकिन इतना निकट रहने वाले आप पर लोगों की दृष्टि नहीं है, हमेशा दृष्टि बाहर है, वही प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, वही प्रकाश का अर्थ है बाहर का ज्ञान। बाहर का अनुभव है, ज्ञान है, लेकिन भीतर ही भगवान रह रहे हैं, इसका ज्ञान नहीं है देहधारियों को। तो इसके प्रपर्ट में श्रील प्रभुपाद जी कहे हैं कि हमें अपने को शुद्ध करना है और शुद्ध करके भगवान को समझ लेना है। इसी जीवन में आगे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कैसा शरीर मिलेगा, कैसी संगति मिलेगी, इसमें मनुष्य हैं कितनी फैसिलिटी है। कि आप कल्पना कीजिए, अगर किसी को बिल्ली या कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है तो कितनी जघन्य स्थिति है, कितनी निंदनीय है। घोर अज्ञानी प्राणी कुछ नहीं जानता है भगवान के बारे में, दुनिया के बारे में भी नहीं। और हम यदि ये शरीर पा करके फिर भगवान को नहीं जाने तो फिर उसी अज्ञानमय स्थिति में रहेंगे, तमोगुण में। और भोगों का यह स्वभाव है कि उसमें रहेंगे तो कभी शांत नहीं होंगे, हमेशा अशांति बनी रहेगी। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है शांति प्राप्त करने के लिए तीन बात, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। भगवान कहते हैं तीन बात जान लोगे तो तुमको तत्काल शांति प्राप्त होगी। पहली बात, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कह रहे हैं मैं समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का भोक्ता हूं। जो भी मनुष्य दुख सहता है, तपस्या करता है या यज्ञ करता है, अपनी ड्यूटी करता है, तो सभी कर्म का फल होना चाहिए भगवान को जानने। मतलब मैं ही सबके कर्मों का भोक्ता हूं और मैं ही तपस्या का भी भोक्ता हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। इस संसार में कोई भी कुछ काम करता है या अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसका कुछ भोक्ता समझ होता है। भोक्ता मतलब किसी के सुख के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए काम करता है। कभी कभी अपने विषय में प्रश्न करना चाहिए, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। कोई अपने पुत्र के लिए काम कर रहा है, कोई समाज के लिए, कोई पत्नी के लिए, किसी न किसी को प्रसन्न करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो किसको प्रसन्न करने के लिए काम करें, तपस्या करें, दुख सहें। भगवान कहते हैं ये यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूं। भगवान कृष्ण सभी यज्ञ के और तपस्या के भोक्ता हैं। जब हम ये जान जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, एक बात। और दूसरी बात है सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का और सभी जीवों का महाईश्वर मैं हूं। तो हम किसके अधीन हैं, कौन स्वामी है, हमारा मालिक कौन है। भगवान कहते हैं मैं महाईश्वर हूं। यदि कोई कहे कि ईश्वर तो भगवान शंकर भी हैं और श्री ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, इंद्र भी ईश्वर हैं, तो भगवान स्वीकार करते हैं हाँ वे हैं, लेकिन सबका महाईश्वर, सबके ऊपर परम ईश्वर मैं हूं। इस बात को जानना और अंत में ये जानना कि इस संसार में हमारा सबसे बड़ा सुहृद कौन है, सभी जीवों का, चर अचर सभी जीवों का सुहृद मैं हूं। वृक्ष लता घास आदि यहां से लेकर कर ब्रह्मा जी तक सभी जीवों का मैं सुहृद हूं। तो जब हम जान जाएंगे भगवान कृष्ण यज्ञ और भोक्ता के, यज्ञ और तपस्या के भोक्ता हैं, सभी लोगों के महान ईश्वर हैं और सबके परम सुहृद हैं, तो तुरंत शांति मिल जाएगी। केवल जानने से, इन तीन बातों को जानने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति, इच्छति प्राप्नोति, जान करके शांति पा लेता है जी। इस संसार में भी देखिए कोई आदमी चिंतित रहता है, लेकिन उसको कोई बहुत बड़ा सहायक मिल जाए, बहुत शक्तिशाली और बहुत धनी, बहुत पावर वाला, तो व्यक्ति कुछ देर के लिए निश्चिंत हो जाता है। यदि किसी को अपना मित्र मिल जाए या सहायक मिल जाए और वह देश का बड़ा प्रधान हो, राष्ट्रपति हो, तो उसको कितनी सांत्वना होती है। सोचता है हमारे पीछे हमारा सहारा ही आदमी है, कोई बात नहीं। जबकि संसार में, इस पृथ्वी पर किसी का पद सिक्योर नहीं है। आगे चिंता रहती है हम आगे होंगे कि नहीं होंगे, और ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलते हैं तो 5 साल, 5 साल कोई मालिक है, 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर है, आगे का कोई निश्चित नहीं होता है कि हमारा पद रहेगा कि नहीं रहेगा। पर ऐसे व्यक्ति का भरोसा पा करके भी हमें शांति होती है। और जहां वास्तविक ईश्वर कह रहे हैं कि मैं लोक महेश्वर हूं, मैं सबसे बड़ा ईश्वर हूं, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, इंद्र आदि देवताओं का भी, सबका मैं ईश्वर हूं और सबसे बड़े ईश्वर हैं और हमारे सबसे सुहृद हैं, निकट सभी जीवों के सुहृद हैं। ऐसा नहीं केवल मनुष्यों के, भगवान कह रहे हैं सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ईश्वर सब जीवों के हृदय में है और वह ईश्वर मैं हूं। तो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। हम पर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा कि बहुत दूर है, अब उनके लिए गाड़ी भेजो। यहां तो फोन तक नहीं करना पड़ेगा, वो हृदय में ही है, यहां क्या फोन करेंगे। तो फोन करने की जो बात होगी, कोई इच्छा, तो पहले भगवान जान जाते हैं, तब हम जानते हैं। वो सब जानते हैं प्रभु, अब जीव की प्रत्येक इच्छा को, उसकी वासना को जानते हैं, क्योंकि वे सबसे निकट हैं, सबसे निकट हृदय में ही है और सुहृद हैं। जो सुहृद उसे कहते हैं जो बिना प्रार्थना के अपने आप हमारा हित करने पर तुला हुआ है, उसको सुहृद कहते हैं। कोई प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, हे कृष्ण हमको ये शक्ति दीजिए, प्रार्थना भी नहीं चाहिए। वो इसीलिए हृदय में बैठे हैं कि हमारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करेंगे, हमारा सुधार करेंगे। और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, जितने जीव हैं सबके हृदय में हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूं। कितनी सामर्थ्य है कि वे केवल गोलोक में ही नहीं हैं, गोलोक में वैकुंठ में तो हैं ही, इस प्राकृत जगत में जितने जीव हैं उतने भगवान हैं। जीव भगवान नहीं है, लेकिन जीवों के साथ हैं भगवान, हृदय में हैं। उसको स्मृति देने के लिए, विस्मृति देने के लिए, विस्मृति भी बहुत जरूरी है, तो ज्ञान देने के लिए भगवान बैठे हैं हृदय। और हम तो सो जाते हैं, लेकिन भगवान सोते कभी नहीं है, हमेशा जगे रहते हैं। तो इतना बड़ा सहायक मिला है, इतना सुंदर फ्रेंड मिला है भगवान, और वे हृदय में हैं और इसके साथ साथ मंदिर में हैं, घर में हैं, सब जगह है। कैसे प्रभु को समझने का प्रयास करना चाहिए, बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रात को नींद तोड़ तोड़ करके हमें उनका स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, जप, जप करना और ग्रंथ पढ़ना, पूजा करना, ये सब याद करने के नियम हैं भगवान को समझने के। संसार में सभी जीवों की ये दशा है, भूले हुए हैं, और यही कारण है कि भगवान सबके हृदय में साथ में है, वे छोड़े नहीं हैं जीव को। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो भगवान का साथ नित ही रहता है, भक्त तो सब याद रखते हैं हमेशा, लेकिन इस प्राकृतिक जगत में सब जीव भूले रहते हैं, अतः भगवान कृपा करके साथ में रहते हैं। वो यही सोचते हैं कि कब हमारे तरफ दृष्टि करेगा, ये कब कृष्ण भावना भावित होगा। और इतनी सुविधा के बाद भी, इस्कॉन की स्थापना के बाद भी, और भगवद गीता एज इट इज रहने पर, श्रीमद भागवत के रहने पर, यदि हम कृष्ण को इस जीवन में नहीं पाए तो हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी और बहुत दुख में पड़ेंगे। अतः भगवान को समझ लेना चाहिए, महामंत्र के जप द्वारा, भगवान को प्रणाम द्वारा, और हृदय में ही हैं बराबर उनका स्मरण करना है। ठीक है, हरे कृष्ण।